नाज़रीन, इस वक्त स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं अली अब्बास रिज़वी साहब। अली अब्बास साहब, जैसा कि आपने रिपोर्ट में भी देखा कि यमन का जो अलहुदैदा इलाका है उस पर सऊदी अरब ने अपने इत्तेहादियों समेत, हत्ता कि अमेरिका, इसराइल, बरतानिया, फ्रांस की मदद से एक भरपूर हमला किया है इस पर कब्जा करने के लिए। दूसरी जानिब जो यमनी अफवाज हैं, जो अवामी रजाकार फोर्स है, उसने कहा है कि ये इनका ख्वाब ख्वाब ही रहेगा, अमली हकीकत इख्तियार नहीं कर सकेगा। तो आप इस मजमूई सूरत हाल को इस वक्त कैसे देखते हैं?
जी, बहुत शुक्रिया आपका। मजमू सूरत हाल पर आने से पहले मैं यहाँ पर आपकी खिदमत में और अपने नाज़रीन की खिदमत में ये बताना चाहूँगा कि जब 26 मार्च 2015 को सऊदी अरब ने हमला किया था यमन पर और जारहियत के इरतकाब किया था, जिसका सिलसिला आज तक जारी है, तो उस वक्त
जी
उन्होंने ये नारा दिया था कि हम यमन के सदर जो कि मफरूर हो चुका था, माजूल हो चुका था मंसूर हादी, उसको दोबारा इख्तदार में लाने के लिए सब कुछ करें। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता गया ये बात वाजे होती गई कि सिर्फ यही मकसद नहीं, तो मुमकिन है कि एक छोटा सा ये भी एक मकसद रहा हो।
जी
लेकिन यमन के बहरान के ताल्लुक से जाहिर है कि एक बड़ी साजिश रची गई थी, और साजिश रचने वाले जाहिर है कि सऊदी हुक्मरान नहीं थे, सऊदी हुक्मरान तो आलेकार थे, अमेरिका और इसराइल और मगरबी ताकतों को, या यूं कहा जाए कि जो इस्लाम दुश्मन ताकतें हैं उनके मंसूबे को अमली जामा पहनाने के लिए इनको जो है वो सऊदी हुक्मरानों को, ख़ास तौर पर मोहम्मद बिन सलमान और शाह सलमान को इस्तेमाल किया गया, और फिर सऊदी हुकूमत ने अपने साथ चंद मुल्कों को मिलाकर ये कार्रवाई की, और एक अरसे तक ये नारा देते रहे कि हम मंसूर हादी को दोबारा इख्तदार में लाना चाहते हैं। लेकिन अब आप देखें कि वक्त गुजरने के साथ साथ मंसूर हादी के कहीं भी कोई अता
जी
पता नहीं आता, सऊदी हुक्मरान भी जो है उसका नाम नहीं लेते, और मुत्तहदा अरब अमारात से तो जाहिर है कि मंसूर हादी की जो है खुलकर चल रही है, और जो सकोत्रा जजीरे में जो कुछ हुआ वो सब दुनिया जानती है। तो अब शाम और इराक में शिकस्त खाने के बाद जो इनका मुसल्लस था सऊदी अरब, इसराइल और अमेरिका का, उसको जाहिर है कि ये तशवीश बढ़ गई उसके अंदर कि अब जो उसके सारे मंसूबे थे, एक तो ये कि इसराइल को सिक्योरिटी फराहम करने का मंसूबा वो नाकाम हो गया, क्योंकि इसराइली हुकाम उस वक्त भी कह रहे थे 2011 के बाद कि अगर हम बशार असद को इख्तदार से बेदखल ना कर सके तो इसराइल तबाह हो जाएगा,
जी
और आज इसराइली हुकाम को अपनी तबाही जो है वो नज़र आ रही है। दूसरी तरफ जिस तरीके से यमन में अवाम ने इनकलाब करके अपनी हुकूमत दी थी, और जाहिर है कि आज भी यमन में जो हुकूमत है साल्वेशन नेशनल साल्वेशन की वो अवामी हुकूमत है, तो इससे सऊदी हुकूमत को एक तरफ ये ख़तरा लाहक है कि हमारे जुनूबी बॉर्डर पर एक मुंतखब अवामी हुकूमत है, इधर इराक जो है जो कि उसकी दूसरी
जी
सरहद यानी हमसाय हुकूमत है सऊदी अरब की, वहाँ पर भी अवामी हुकूमत है। बहरीन के अंदर जो है वो जाहिर है कि आप देख लें 2011 से
जी
अवामी तहरीक जारी है, कतर से जो है उसके अख्तलाफात अपने उरूज पर हैं, तो सऊदी हुकूमत आले सऊद जो है वो पूरी तरह से चारों तरफ से घिरती जा रही है, तो वो चाहती है कि कहीं ना कहीं से ये जो यमन वाला जो उसका बॉर्डर है, जो हमसाय मुल्क यमन है, वहाँ पर अवामी हुकूमत या जमहूरी हुकूमत बरसर इकतदार ना आने पाए, क्योंकि अगर यमन में ऐसा कुछ हो गया तो फिर तहरीक जो है वो जो कि अंदर अंदर पक रही है सऊदी अरब के अंदर, अवामी तहरीक जो है वो सर उठा लेगी और फिर इनका जो है बोरिया बिस्तर जो है लपेट दिया जाएगा, ये तो सऊदी हुकूमत की बात है। दूसरी तरफ जो अमरीका और इसराइल हैं उनको जो तश्वीश और परेशानी लाहक है कि अगर ये के बाद दीगरे इस इलाके में या इन मुल्कों में अवामी हुकूमतें आ गई तो एक सऊदी अरब तो अपनी जगह, इसराइल की जो सिक्योरिटी है उसको जो है वो शदीद ख़तरा लाहक हो जाएगा, और फिर जो अमरीकी मफादात हैं, मगरबी मुल्कों के मफादात हैं, उनको बुरी तरह से नुकसान पहुँचेगा और मजबूर होंगे कि अमरीका और उसके इस इलाके से अपना बिस्तर समेटने पर। तो अब जो अलहुदैदा में जिस तरीके से जो कि एक वाहिद रास्ता है यमन के महसूर आवाम को गजाई अशिया या इमदाद पहुंचाने का, उस पर यह कब्जा करना चाहते हैं ताकि यमनी आवाम को पूरी तरह से बेबस कर दें। आज आप देखें कि फौज के साथ साथ यमनी आवाम ही जो है वो जारे ताकतों का मुकाबला करें, और अलहुदैदा के बारे में जो तजिया निगार हैं आलिमी मुबसरीन का कहना है कि अलहुदैदा के अवाम, यूँ तो जाहिर है कि यमन की एक अपनी तारीख रही है कि किसी भी जारे कुव्वत को वहाँ पर कामयाबी नहीं मिली है और हमेशा जो है यमनी अवाम को ही फतह नसीब हुई है, लेकिन इस दौरान अलहुदैदा के अवाम जो बाशिंदे वो बहुत ही पीसफुल और पुरान लोग कहलाते थे, लेकिन खुद अब अलहुदैदा के बाशिंदे जारे कुव्वतों के मुकाबले में उठ खड़े हुए हैं, और यही वजह है कि अगर यमनी फौज या अवाम ये कह रहे हैं कि जो भी अलहुदैदा में दाखिल हुआ वो जिंदा बचकर जाएगा नहीं, तो کی وجہ یہ ہے کہ الحدیدہ کے عوام اور یمن کے عوام پوری طریقے سے اپنی سرزمین اور اپنے وطن کا دفاع کرنے کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے ہیں. تو ایسے میں اب یہ ان کی حیثیت, ان کی عزت و آبرو اور ان کی ساکھ اور ان کے مفادات جو جار قوتیں سب کا مسئلہ بن چکا ہے. تو اس لیے آپ دیکھیں کہ اسرائیل, برطانیہ, فرانس, امریکہ کھل کر, ابھی تک تو کہتے تھے کہ ہم لاجسٹک سپورٹ کر رہے ہیں, ابھی تک یہ کہتے تھے کہ ہم انٹیلیجنس سپورٹ کر رہے ہیں, لیکن اب ان کے فوجی محاذ جنگ پر ہیں اور اگلے مورچوں پر ہیں. اور آپ نے خبروں میں سنا ہوگا میں ناظرین نے کہ ابھی پرسوں کی بات ہے یا کل کی بات ہے کہ 100 فوجی جو ہے اتحادی افواج کے مارے گئے, جن میں متعدد فوجی اسرائیل کے تھے, متعدد جو ہے وہ امریکہ کے تھے, سعودی عرب کے 25-30 جو ہے متحدہ عرب امارات کے تھے, امریکہ کے بھی تھے, اور فرانس کے جو بحری جنگی جہاز سے کمانڈوز پکڑے گئے ہیں. تو یہ سب اس بات کو ظاہر کرتے ہیں کہ اب انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ یمن کا جو مورچہ ہے وہ کسی بھی صورت میں جیتنا ہے. لیکن جیسا کہ تاریخ نے ثابت کیا ہے اور جیسا کہ عوامی قوت کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں کسی بھی ملک میں کہ جب عوامی قوت متحد ہو جاتی ہے تو اسے کوئی بھی طاقت شکست نہیں دے سکتی, تو یہاں پر بھی ہمیں نہیں لگتا ہے کہ فرانس, برطانیہ, امریکہ, اسرائیل, سعودی عرب سب مل کر بھی یمنی عوام کو شکست دے سکیں گے, جیسا کہ پچھلے 3.25 سال میں اب تک وہ یمنی عوام کا کچھ نہیں بگاڑ سکے. یہ ہاں اور بات ہے کہ بچوں کا قتل عام کیا جا رہا ہے, گھروں کو برباد کیا جا رہا ہے, بنیادی تنصیبات کو جو ہے وہ پوری طرح سے نابود کیا جا رہا ہے, یمن کے بچے پینے کے پانی کو ترس رہے ہیں, یہ اپنی جگہ, لیکن ان کے جذبہ استقامت میں کہیں کوئی لغزش یا کمزوری ابھی تک دیکھنے میں نہیں آئی.
جی بہت بہت شکریہ آپ کا.